ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV-C60 रॉकेट को दो उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया। PSLV-C60 रॉकेट ने SDX-1 यानी चेजर और SDX-2 यानी टारगेट के नाम के दो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। इस रोमांचक डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के विशेषज्ञ पत्रकार पल्लव बागला। बागला जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
नमस्कार
बागला जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो हमने पूरा देश एक्साइटेड है, ये जो लॉन्च हुआ है और इसे कहा जा रहा है कि ये बहुत ही एक टेक्नोलॉजी है जिस पर अगर भारत वो पा लेता है कहें कि मास्टरी, तो एक बहुत बड़ा लीप होगा हमारी साइंस टेक्नोलॉजी जर्नी में। तो आप हमें बताएं कि जो ऑर्बिटल डॉकिंग है ये क्या कॉन्सेप्ट है, सरल शब्दों में बताएं ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स, जिसको कि भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने 62वीं उड़ान में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ये बड़ा अहम कदम है भारत के लिए आगे के कार्यक्रम पूरा करने के लिए। अगर चंद्रयान 4 को करना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनना है या एक भारतीय को चांद की सतह पर पहुंचाना है, उसके लिए पहला कदम है। स्पेस डॉकिंग उस क्रिया को कहते हैं कि अंतरिक्ष में दो ऑब्जेक्ट को साथ लाना, जोड़ना और उनमें से माल या आदमी या औरत को एक दूसरे में पार करना। अगर समझाया जाए तो सैटेलाइट जो छोड़े गए, चेजर और टारगेट, ये अंतरिक्ष में करीबन एक बुलेट की 10 गुना रफ्तार की तेजी से चलेंगे और दोनों को अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ज्यादा की ऊंचाई पे पास लाया जाएगा, दोनों को साथ जोड़ा जाएगा और दोनों में पावर ट्रांसमिशन चेक किया जाएगा और फिर दोनों को अलग कर दिया जाएगा। जब जोड़ा जाता है तो उसको डॉकिंग बोलते हैं, जिसको हटाया जाता है तो अनडॉकिंग बोलते हैं। आमतौर पे हम और आप जब देखते हैं, जब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी और स्पेस स्टेशन में एंटर की थी बोइंग स्टारलाइनर से, तो जो बोइंग स्टारलाइनर आके जुड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उसको डॉकिंग बोलते हैं
जी।
और डॉकिंग की क्रिया जो है अभी तक केवल रूस, अमेरिका और चाइना ने हासिल की है, तो भारत चौथा देश बन रहा है जो इसको अटेम्प्ट करके आगे तैयारी में है पकड़ लेने के लिए, क्योंकि हमारे आगे के प्रोग्राम जो हैं सारे स्पेस डॉकिंग पे निर्भर हैं। लेकिन ये जो मिशन था ये बहुत मायनों में बहुत ही यूनिक इनोवेटिव मिशन है। स्पेस डॉकिंग तो इसका केवल एक छोटा हिस्सा है।
सो बाकी जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही यूनिक है और इसके और भी कई पहलू हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है?
ये एंड टू एंड इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल मिशन है। करीब 400 करोड़ से कम का खर्चा है इस मिशन पे। रॉकेट जो बनाया वो अनंत टेक्नोलॉजीज ने हार्नेस और उसका इंटीग्रेशन किया। जो सैटेलाइट बनाया गया था वो भी बंगलुरु की एक कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज ने उसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग किया। पहली बारी है कि प्राइवेट सेक्टर में पूरा सैटेलाइट बन के आया है और अंतरिक्ष में जा रहा है, तो रॉकेट भी नया हो गया एक तरह से, सैटेलाइट भी नए हो गए। डॉकिंग पहली बारी करेंगे हम, बिल्कुल नई चीज है, हमने कभी उसकी मास्टरी नहीं की। उसके बाद जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का चौथा चरण है, आम तौर पे वो अंतरिक्ष में कचड़ा बन जाता है, स्पेस डेब्री बन जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। इसरो ने कहा हम इसमें वेस्ट टू वेल्थ करेंगे। अब चौथे चरण में उसको स्टेबलाइज करके एक लोअर ऑर्बिट में ले आए हैं और उसमें 24 अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, तो जो कचड़ा बनना था उसमें 24 अलग अलग एक्सपेरिमेंट लग गए, भारत की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हैं, स्टार्टअप्स के हैं और कुछ इसरो के अपने इंस्टीट्यूशंस के एक्सपेरिमेंट, जिसको पेलोड बोलते हैं, वो लगे हुए हैं। तो रॉकेट भी नया, सैटेलाइट भी नया, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी पहली बारी कर रहे हैं और ये पोएम जो है PSLV ऑर्बिटल मॉड्यूल फोर्थ स्टेज जो है ये भी इसमें नए हैं। तो एंड टू एंड ये इनोवेटिव मिशन है और छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़ी छलांग लगाने की पूरी उम्मीद है।
आपको लगता है कि भारत ने जो पिछले कुछ वर्षों में और खासकर ये चंद्रयान की जो सफलता हुई, हम लोग ल्यूनर साउथ पोल पे फर्स्ट कंट्री बने जो वहां पहुंचे, वहां लैंड किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आत्मनिर्भरता की तरफ हम अपने जो कदम है वो तेजी से बढ़ा रहे हैं?
बिल्कुल। देखिए, ये जो स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी है ये हमारी इंडिजिनस स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका इजाफा किया है और जो है वो उनके अपने देशों की है, कोई ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। तो आपको अपने ही तरीके से, नए तरीके से सीखना है, बनाना है, करना है। तो स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी स्वदेशी है, आने वाले चंद्रयान से जो हमने सीखा है, अब चंद्रयान 4 में जो एक चांद की सतह से चांद के पत्थर को वापस लाना है उसमें हमको डॉकिंग करनी पड़ेगी, हमारे रॉकेट के पास वो क्षमता नहीं है कि वो सीधा चांद की तरफ चला जाए। तो डॉकिंग जो है वो कदम है हमारे चंद्रयान के लिए, गगनयान के लिए और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, और ये सब भारत के अपने वैज्ञानिक अपनी दम पे कर रहे हैं, तो इतने गर्व की बात है। और एक के बाद एक छोटे छोटे कदम लेके बड़ी छलांग की तैयारी है, क्योंकि गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी क्लियरेंस दी है, करीबन 21,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इस साल सैंक्शन मिली है इसरो के, बहुत बड़ा नंबर है, इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा नंबर नहीं देखा कि इतनी क्लियरेंस एक कैबिनेट मीटिंग में निकले, उन सब के लिए ये इनेबलिंग स्टेप है
जी।
तो ये स्पेस डॉकिंग का मिशन जो है देखने में छोटा है लेकिन इसकी जो यूजफुलनेस है वो अगले 2-3 दशकों तक होगी।
और हमने दिसंबर में एक डेवलपमेंट देखी कि एक भारतीय रॉकेट ने 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, सो आपको लगता है कि अब उस लेवल तक हमारी डेवलपमेंट हो गई है, हमारा विकास हो गया है स्पेस सेक्टर में कि हम दूसरे डेवलप्ड देशों को भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें?
भारत काफी टाइम से फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट छोड़ रहा है, 400 से ऊपर अलग अलग छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़े हैं, और जो आपने मेंशन किया ये एक यूरोपियन सैटेलाइट था जिसके कि हमने लॉन्च किया था, प्रोबा के नाम से सैटेलाइट है और बहुत ही महंगा सैटेलाइट था, $200 मिलियन से ज्यादा महंगा का सैटेलाइट है जो कि यूरोप में बना था, और खुशी की बात है कि उन्होंने भारत के रॉकेट को चुना अपने इस यूनिक मिशन के लिए जिसमें कि पहली बारी वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे जो कभी नहीं की है किसी ने, एक आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स बना के उसके लिए सूरज को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत अहम मिशन था लेकिन वो था कमर्शियल मिशन, वो भारत के पास एक कमर्शियल लॉन्च एग्रीमेंट में आए थे और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को उन्होंने हायर किया था।
आपको लगता है कि बहुत हम मजबूती से उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हम आत्मनिर्भर भी हों और कोलैबोरेट भी करें बाकी देशों के साथ, और इसका जो ओवरऑल फायदा क्या होगा भारत को भी और पूरे विश्व को भी, ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इतनी जो एडवांसमेंट हो रही है अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसका ओवरऑल फायदे क्या होते हैं ह्यूमन काइंड को, वो थोड़ा अगर हमें बताएं।
देखिए, भारत का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम है वो भारत के अपने डेवलपमेंट के लिए है
जी,
औरों के लिए जब सैटेलाइट छोड़ने की बात आती है कमर्शियल बेसिस पे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैपेसिटी होती है तब हम और लोगों के लिए करते हैं। पूरी तरह हमारा प्रोग्राम जो है भारत का वो भारतीय नागरिकों के लिए है। आज हमारी जिंदगी में अंतरिक्ष हर पहलू में जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एक आध उदाहरण दूं, जब आप ATM से पैसा निकालने जाते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं भारतीय अंतरिक्ष सैटेलाइट से जुड़ना पड़ता है। जो साइक्लोन होते हैं बंगाल की खाड़ी में आते हैं उसकी फोरकास्टिंग के लिए कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। आप और हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी सैटेलाइट के थ्रू होती है। तो आज हर नागरिक के हर दिन में कहीं ना कहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जरूर जुड़ी है और उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। अभी हाल में एक स्टडी आई थी, उसने ये बताया कि हर एक रुपया जो भारत ने इन्वेस्ट किया है भारतीय अंतरिक्ष सिस्टम में उससे हमको 2.52 रुपए वापस मिले हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, तभी भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार स्पेस में इन्वेस्ट कर रही है। और जब आप गूगल मैप खोलेंगे इधर से उधर जाने के लिए तब आप अंतरिक्ष में जुड़ेंगे। तो पूरे वक्त कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ाव जो है वो हर नागरिक का है, भले ही वो किसान हो या मजदूर हो या IT वर्कर हो या प्रधानमंत्री हो, वो भी हरदम स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं क्योंकि उनके लिए खुद बहुत पसंदीदा क्षेत्र है और इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी तरफ से बहुत जोर रहता है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी पे भी और भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम पे, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का बहुत रोल हो गया है। 200-250 स्टार्टअप बन गए हैं स्पेस सेक्टर में जो बहुत मदद कर रहे हैं भारत के स्पेस सेक्टर को।
बिल्कुल, कल जो प्रक्षेपण हुआ उसके अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कई लोगों ने उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि ये स्पेस बैले हो रहा है दो सैटेलाइट्स के बीच में, बिकॉज उनको इतने प्रिसीजन इंजीनियरिंग है कि उनको वो डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, फिर डॉक करना है। आने वाले मिशन के बारे में बताएं कि और अभी हम आशा करते हैं, और जैसा कि सोमनाथ जी ने कहा जो इसरो के चेयरमैन है, कि 7 जनवरी को डॉकिंग हो भी जाएगी, आगे के और क्या अभी भविष्य में मेन हमारे मिशंस हैं जो आने वाले हैं?
आपने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया स्पेस डॉकिंग का, बैले बोल के, बैले बोलो उसको या एक अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की जुगलबंदी बोले, आप उसको जिस तरह भी डिस्क्राइब करिए, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल काम है। आने वाले साल में कई मिशन है जो कि भारत अंजाम देगा, जिसमें गगनयान के पहले अनक्रूड मिशन को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें एक रोबोट को व्योमित्रा को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसी तरह से हमारा एक नाविक का सैटेलाइट है वो भी भेजा जाएगा, जो अगली उड़ान है इसरो की। अभी तक 99 रॉकेट छोड़े जा चुके हैं श्रीहरिकोटा से, 100वां रॉकेट जो छोड़ा जाएगा वो श्रीहरिकोटा से नए साल में छोड़ा जाएगा, और उसमें एक नाविक का सैटेलाइट जाएगा, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और उसके साथ साथ आगे की तैयारी में कई सालों की तैयारी है, इसरो का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी अपना काम जोर शोर से कर रही हैं, और सब मिलजुल के कहीं ना कहीं भारतीय स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पेलोड्स गए हैं प्राइवेट संस्थाओं के, इंस्टीट्यूशंस के, उसके कुछ एग्जांपल्स देके हमें बता सकते हैं कि ये जो पेलोड जाते हैं ये किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं अपना स्पेस से?
बहुत अच्छा सवाल, जो मैं एक चीज बताना भूल गया, ये स्पेडेक्स मिशन में पहली बारी हमने जीवाणुओं को अंतरिक्ष में भेजा है, इससे पहले हमने कभी जीवाणु नहीं भेजे। तो लाइव एक्सपेरिमेंट्स अंतरिक्ष में गए हैं बायोलॉजी के, उसमें काउपी के सीड्स का जर्मिनेशन है उसका एक्सपेरिमेंट होगा जो इसरो के वैज्ञानिक कर रहे हैं, गट बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट है, उसके साथ साथ पालक के जीवाणुओं को अंतरिक्ष में कैसे उगा सकते हैं उसका एक्सपेरिमेंट है। तो पहली बारी हम अंतरिक्ष में किस तरह से जीव को जीवित रख सकते हैं उसके एक्सपेरिमेंट हैं, और ये सब कदम हैं क्योंकि आने वाले टाइम में हमको सस्टेन्ड प्रेजेंस चाहिए अंतरिक्ष में ह्यूमंस की। तो अगर भारतीयों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना है तो आपको क्रॉप्स भी उगाने पड़ेंगे और गट बैक्टीरिया को भी समझना पड़ेगा, और साथ साथ आपको और जो जीवाणु हैं उनके साथ कैसे जी सकते हैं, क्या फिजियोलॉजी बायोलॉजी होगी उसकी स्टडी भी करनी है। इसके साथ जो प्राइवेट स्टार्टअप हैं उनके और भी एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें ग्रीन प्रोपल्शन का एक्सपेरिमेंट है बेलाट्रिक्स का, और एक जो खास एक्सपेरिमेंट दो इसरो की तरफ से हैं वो एक स्पेशल रोबोटिक आर्म है जिससे कि अंतरिक्ष का कचरा पकड़ने में आसानी मिलेगी उसके लिए है, और एक इंचिंग रोबोट है जो एक छोटे से कीड़े की तरह चलता है, उठ उठ के चलेगा और आगे बढ़ेगा, जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा उसमें काम आएगा। इसी तरह के एक नहीं दो नहीं दो दर्जन एक्सपेरिमेंट हैं। भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं वो इस पोएम मॉड्यूल से बहुत फायदा ले रहे हैं, क्योंकि आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाते, तो इसरो ने मौका दिया है भारतीय स्टार्टअप्स को, कुछ को तो फ्री में भेजा जा रहा है कि अंतरिक्ष में भेज सकें, और एक बारी जब उनका काम सफल हो जाए तो वो दुनिया को बता सकें कि हमारा काम हो रहा है और उनको ऑर्डर मिल सके। सबसे जोखिम वाला काम प्रक्षेपण होता है, जो अंतरिक्ष में जुगलबंदी होनी है जिसको कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, अंतरिक्ष में बैले होगा, उसका काम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उम्मीद है हो जाएगा, और फिर बाकी एक्सपेरिमेंट तो शुरू हो चुके हैं। पोएम ने तो अपना काम शुरू कर दिया है, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट तो कामयाबी से पूरा कर लिया गया है, और आने वाले टाइम में इसरो की बड़ी कामयाबी होगी और भारत को उससे बहुत फायदा होगा।
अंतरिक्ष क्षेत्र में ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है स्पेडेक्स मिशन जो हमने लॉन्च किया है, उस परिप्रेक्ष्य में हमसे इस विस्तृत चर्चा के लिए और इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला और कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094। 4044।